ओम शांति। सभी माताएं बैठ जाएं। ओम शांति। सभी ने इंटरनेशनल योग में विशेष कौन सा अभ्यास किया? आज मीठे बाबा ने सवेरे सवेरे हम सबको अशरीरी भव का विशेष वरदान दिया था। आज की मुरली सबको याद है ना? आज बाबा की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली में पहले शब्द में ही बाबा ने हम सबको अशरीरी भव, सेकेंड में इस शरीर से अलग हो जाओ, और अभी हम सबको एक गोल्डन चांस मिला। तीसरा रविवार पूरे विश्व के अंदर, सभी ब्राह्मणों के अंदर विशेष योग अभ्यास करने के लिए होता है। पूरे विश्व के अंदर अपने समय अनुसार 6:30 से 7:30 बजे तक योग अभ्यास सभी बाबा के बच्चे करते हैं। पूरे ग्लोब को शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें, शक्तियों की किरणें देते हैं। आज भी आप सभी ने मधुबन के इस विशाल डायमंड हॉल में इंटरनेशनल योग किया, और जरूर अशरीरी स्थिति का भी अनुभव किया होगा। बाबा समय अनुसार हम सबको ये इशारा कर रहे हैं। शिवरात्रि की मुरली आप सबको याद होगी, 9 तारीख को जब बाबा आए थे, इसी सभा के बीच में हम सभी से 5 मिनट की ड्रिल कराई थी, और उस ड्रिल में विशेष शरीरी बनने का अभ्यास कराया था। बाबा ने विशेष इशारा किया कि बच्चे बीच बीच में जब समय मिले 1-2 मिनट भी ये ड्रिल जरूर करना। तो आप सभी करते हैं ये ड्रिल बार बार, मैं आत्मा इस ब्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, इस देह से भिन्न हूँ। अगर कुछ समय के लिए भी देह से डिटैच हो जाते हैं तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। आवाज मुख की भल बंद हो, लेकिन अगर मन के अंदर भी संकल्पों की आवाज चलती है तो भी वायुमंडल में सन्नाटा नहीं बनता, आकर्षण नहीं आता। बाबा इस समय अनुसार चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसी प्रैक्टिस करें जो मन के संकल्प भी शांत हो जाएं, सब प्रकार की हलचल समाप्त हो जाए। जैसे देह अलग है, आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई आत्मा इस शरीर से अलग होती है, शरीर छोड़ती है। अभी अभी 2 दिन पहले हमारी परदादी ने, निर्मल शांता दादी ने शरीर छोड़ा, तो मधुबन के पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में उनको, उनकी बॉडी को रखा गया था। शरीर को एसी के अंदर रखा गया, और आत्मा की निशानी एक बाहर छोटा सा दीपक जलाया गया। पूरी रात हम लोगों ने वहां योग किया, बड़े अच्छे अनुभव हो रहे थे, शरीरी स्थिति क्या होती है। शरीर छूटा, आत्मा निकल गई, शरीर पड़ा हुआ है, सब अंग हैं, लेकिन हलचल समाप्त हो गई, आत्मा की निशानी एक ज्योति प्रकट कर दी। बाबा हम सबको शरीर में होते हुए भी अभ्यास कराना चाहता है, क्योंकि बाबा का विशेष इशारा रहा कि ऐसी नाजुक परिस्थितियां अभी बहुत समीप आने वाली हैं, जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, भोजन, जल, ऑक्सीजन, अगर ये मूल आवश्यकताएं दूषित हो जाएं, साधन सब हों, जैसे जब बाढ़ आती है पानी बहुत होता है लेकिन पीने लायक नहीं होता, पानी के बीच में बैठे हुए लोग भी प्यासे होते हैं, उनको पानी की बोतलें पहुंचाई जाती हैं, ऐसे ही जब नाजुक परिस्थितियां ऐसी कोई विकराल अंतिम समय में आएंगी, अचानक, बाबा तो कहते हैं बच्चे अचानक कुछ भी हो सकता है, हम सब जानते हैं कि प्रदूषण इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है, जो ये ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो भी पोल्यूटेड होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, और जो भोजन खा रहे हैं उसके अंदर भी कितने प्रकार के केमिकल्स मिक्स हो गए हैं, जहरीली दवाइयां डाल डाल करके जो अनाज, फल, सब्जियां हमको मिलती हैं मार्केट के अंदर, दिखाई तो बहुत सुंदर देती हैं, ऐसी आकर्षण होती है कि बहुत हरी सब्जियां हैं, बहुत सुंदर गोभी है, बहुत सुंदर पालक है, लेकिन उसके ऊपर किस प्रकार की दवाइयां, किस प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग हुआ है, जो चीजें हमारी तंदुरुस्ती के लिए हैं वही खाने से शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां हो रही हैं। तो साधन सब होंगे, ऐसे साधन तो तैयार हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो समय आएगा जो इनका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। ऐसे समय में अगर आप बच्चों को अशरीरी स्थिति का अभ्यास होगा, इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास होगा, तो सेकंड में इस शरीर से अलग होकर बाबा के वतन में आ जाएंगे। कभी बाबा हम सबको कहते हैं बीच बीच में ऐसे ड्रिल करो, अभी अभी साकार शरीर में है, अभी आत्मा इस साकार शरीर से निकल करके एक लाइट के शरीर में, लाइट के रास्ते से लाइट के वतन में पहुंच गई, सूक्ष्म वतन में चली गई, बाबा के समीप, बाबा की दृष्टि के नीचे, लाइट माइट के कोरे में, आभा मंडल में पहुंच गए, वो लाइट का वतन, उसमें भी अशरीरी स्थिति ही चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो यहीं रह जाता है, और फिर वो भी सूक्ष्म शरीर भी छोड़कर जब अशरीरी संपूर्ण बिंदु स्वरूप स्थिति होती है तो मूल वतन का अनुभव होता है, कोई हलचल नहीं, कोई संकल्पों की भी, किसी भी प्रकार की आवाज नहीं, वो मूल वतन की स्टेज जिसको बीज रूप स्टेज कहते हैं। इन तीनों स्टेज में जाने का बार बार अभ्यास, और जब आप सबको ऐसे गोल्डन चांस मिलते हैं विशेष मधुबन में आने के, वैसे अपने कर्म क्षेत्र पर रहते हुए बहुत सी सेवाएं, बहुत सी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है, उसमें अभ्यास हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ऐसे वातावरण के बीच में आए हैं जहां पर निरंतर योग की ज्वाला प्रज्वलित होती है, रहती है, जहाँ इतनी पवित्र आत्माओं का संगठन है, जहाँ योगी तु आत्माएं तपस्या करती हैं, जहाँ स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, इस अवतरण भूमि में, तपस्या भूमि में परमात्मा की, आदि पिता ब्रह्मा बाबा की चरित्र भूमि में जब आप सबको आने का गोल्डन चांस मिला है, तो जितना समय हो सके सेवाएं करो। बहुत बड़ी भीड़ होने वाली है, आप सबने सुना होगा समाचार, ये ग्रुप 25,000 से भी अधिक भाई बहनों का होने वाला है। अब इनके सबके बीच में क्या आप एकांत का अनुभव कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? होगा, आवाज में आप भी आ जाएंगे। कितनी भी आवाजें हों, कितने भी लोग बाह्य मुक्ता में आ जाएं, लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं हैं, जिसको आज बाबा ने पहला नंबर दिया, जो ज्ञान रत्नों का चिंतन करती हैं, जो याद की यात्रा की शक्तियों का अनुभव करती हैं, जो एक की लगन में मग्न रहना जानती हैं, वो सब के बीच में रहते हुए भी अपने उस शरीरी स्थिति का बहुत सुखद अनुभव कर सकती हैं। तो मैं समझता हूँ अभी तो आप सब बाबा के घर में पहुँचे हैं, सेवाएं आपके पास बहुत होंगी, सेवाओं के लिए ही बाबा के घर में आए हैं। अधिकतर सब यूपी से, उत्तर प्रदेश की धरनी से आए हैं। सबको गोल्डन चांस मिलेगा सेवा का, लेकिन क्या सेवा करते हुए उस शरीरी स्थिति का अनुभव हो सकता है? जब बीच में समय मिले एक सेकंड के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को रोक दो, अशरीरी बन जाओ, अपने आत्मिक स्थिति में अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ। अगर कोई सामने आत्माएं भी हैं, तो उनको मुस्कुराते हुए एक रूहानियत की, बहुत स्नेह की दृष्टि दो, उनकी आवाज भी बंद हो जाए, हलचल समाप्त हो जाए। ऐसा अभ्यास अभी से अच्छी तरह से करना, क्योंकि ये अभ्यास अंत समय में भी काम आएगा, और वर्तमान समय भी जो अनेक प्रकार की माया के संस्कारों से युद्ध चलती है, पिछले संस्कार जो इमर्ज होते हैं, उन संस्कारों पर भी सहज विजय हो सकती है, क्योंकि शरीरी स्थिति का अभ्यास कर्म इंद्रिय जीत बना देता है। आत्मा राजा बनकर के इस शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म कराती है। तो हम सब अगर ये अभ्यास करें, चलते फिरते उठते बैठते, तो अपने आप मुख की आवाज शांत हो जाएगी, बोलने की इच्छा ही नहीं होगी, ऐसे लगेगा जैसे मैं तो ऊपर हूँ, इस दुनिया में हूँ ही नहीं। क्योंकि अशरीरी बनने में सबसे बड़ा बाधा, बड़ी रुकावट पुराने संस्कारों की आती है, जो बाबा हमेशा कहते हैं, अगर ये ड्रेस लूज है तो उसको छोड़ना सहज है, उतारना सहज है, अगर किसी ने बहुत टाइट चोला पहना हुआ है, टाइट ड्रेस है, तो उसको उतारने में मेहनत लगती है, समय लग जाता है। तो बाबा ने हम सबको लूज ड्रेस, हल्की ड्रेस, जिसमें कोई भी संस्कार पुराने इमर्ज न हो, दिव्य संस्कार हैं, पवित्र संस्कार हैं, आत्मिक स्वरूप में आत्मा स्थित है, तो डबल लाइट बन जाती है। डबल लाइट होते ही शरीर से डिटैच हो जाती है, एक लाइट है हल्कापन, एक लाइट है ज्योति रूप, लाइट ही है ना दोनों। तो जब इस दोनों स्वरूप में आत्मा स्थित होती है, कोई भी मेरे तेरे का, कोई भी पिछले संस्कार का, स्वभाव का, अगर कोई बोझ लेकर के आए हो, कोई भी हो हिसाब किताब का बोझ, तो बाबा कहता है वो मुझे दे दो। आज क्या करना, सभी रात को सोते समय बाबा को एक बहुत स्नेह से पत्र लिखना, लिखेंगे, काम दूं आप सबको, जो लिखेंगे हाथ उठाओ, लिख सकते हैं, माताएं लिखेंगी, सच्चे दिल से बोलना है, भले 4-6 लाइन का ही लिखना, ज्यादा न लिखना। बाबा और कोई बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बाबा तो बच्चों की भावनाओं को देखता है, बाबा के पास पहुंच जाता है। आप बड़े सच्चे दिल से जो भी कोई ऐसा बोझ हो, कोई ऐसे संस्कार हो, ऐसा कोई हिसाब किताब हो जो मन को बार बार अपनी तरफ खींचता हो, जो अशरीरी बनने में रुकावट डालता हो, उस संस्कार को आज रात को लिख करके बाबा के हवाले कर देना। सुबह बाबा के कमरे में जाओ तो वहां एक लेटर बॉक्स होता है, पत्रों का बॉक्स अलग होता है, उस बॉक्स के अंदर ऐसे संस्कार कोई भी हो बाबा को अर्पित कर, बाबा ये सब तेरे हैं, मुझे अभी इनको रिटर्न नहीं लेना है, ऐसे बाबा को दे करके एकदम लाइट हो जाओ। तब देखेंगे आप, जब बैठेंगे योग में ऐसे बैठेंगे बस बाबा ने सब बोझ ले लिए, आत्मा एकदम हल्की हो गई। 3 वरदान बाबा से जरूर लेकर के जाना। बाबा के घर में आए हो, वरदाता के घर में आए हो, और वरदाता सब बच्चों को खुले दिल से वरदान लुटाता है। संगम युग पर अगर 3 वरदान ले लिए, पहला वरदान है एवर हेल्दी, लिया सबने। आप कहेंगे कलयुग के अंदर तो शरीर की इतनी भोगनाएं हैं, इतने हिसाब किताब हैं, कभी कोई रोग लग जाता है, कभी कोई बीमारी आ जाती, लेकिन बाबा अपने बच्चों को संगम युग पर सदा मन दुरुस्त तन दुरुस्त देखता है। ये वरदान देता है कि मेरे बच्चे मन से एकदम हेल्दी रहें, मानसिक रूप में कोई भी प्रकार की बीमारी, क्योंकि आजकल जितनी बीमारियां हैं मनोचिकित्सक भी मानते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं 80% मन की बीमारियां हैं। बड़ी जल्दी इफेक्ट आ जाता है, कुछ शरीर में थोड़ा सा भी कुछ होता है, मन के अंदर वही संकल्प वही सारी चिंतन चलने लगता है, और जब बहुत चिंतन चलता है तो बहुत डॉक्टर बदलने पड़ते हैं, एक के बाद दूसरा, जिसने जो बता दिया वो थेरापी शुरू कर देते, ये कर लो ये कर लो ये कर लो। और भारत में जितने बीमार जितने लोग हैं उतने डॉक्टर हैं, जिसके पास बैठ जाएंगे आप बोलेंगे मेरे को यहाँ दर्द है, बोलेगा ये चीज लगा लो, ये चीज खा लो, ये बीमारी है ये कर लो, फट से उसी समय आपको हल मिल जाएगा। किसी से बात करके देख लो, छोटा हो बड़ा हो, किसी के पास जाओ, वो आपको फट से दवाई बता देगी। और वो दवाई अगर कर लिया तो बाबा कहता कभी कभी नीम हकीम खतरे जान, जान खतरे में आ जाती है, इसलिए बहुत सोच समझ करके कुछ दवा कुछ दुआ, बाबा पर भी विश्वास रखो, योग पर भी विश्वास रखो, कुछ योग के प्रयोग भी करो, शरीर के लिए भी योग की शक्तियां तंदुरुस्त बनाने में बहुत मदद करती हैं। तुरंत बार 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 इतनी दवाइयों की आदत न पड़ जाए, जो एक दवाई छोड़ी दूसरी ले ली, दूसरी छोड़ी तीसरी ले ली, एक डॉक्टर बदला दूसरे के पास चले गए, दूसरे को छोड़ा तीसरे के पास चले गए, जल्दी ठीक हो जाऊं जल्दी ठीक। कोई भी अगर बीमारी आती है तो कुछ समय तो रहती है, मेहमान आया है ना, अगर आया है तो उसको धैर्यता से शांति से बहुत संकल्प शुद्ध से पॉजिटिव रह करके मन के ऊपर उसका इफेक्ट ना आए। बाबा अपने बच्चों को मन से सदा निरोगी देखना चाहता, सदा हेल्दी सदा खुशनुमा। कोई भी चिंतन नहीं करो, क्योंकि आए हैं हिसाब किताब, प्रकृति के 5 तत्व प्रदूषित हो रहे हैं, और उसके द्वारा भी आजकल जो मनोवृत्तियां हैं, जिस मनोवृत्तियों से अनाज फल सब्जियां उगाई जा रही हैं, उनका भी बुरा प्रभाव उन पदार्थों पर पड़ता है, उनके विचारों का प्रभाव। और फिर अगर किसी ने उसके अंदर केमिकल्स के अधिक प्रयोग कर दिए हैं, अधिक खादें डाल दी हैं, अधिक रसायनें डाल दी हैं, तो उसका भी प्रभाव सब्जियों पर अनाज पर खान पान पर आ जाता है। इसलिए कोई ना कोई, न चाहते हुए भी अचानक बीमार पड़ जाता है, शारीरिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती, छोटे छोटे बच्चों को टेंशन हो जाते, डायबिटीज हो जाती, हार्ट अटैक हो जाते, बीपी बढ़ जाते, जो आज पहले जमाने में ये बातें सुनी नहीं थी, और आज छोटे बच्चे हैं उनको भी कोई ना कोई ऐसा रोग लग गया। कारण क्या? खान पान, जैसा खा रहे हैं वैसा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा है बच्चे, उसको बहुत योग युक्त होकर के, दृष्टि दे करके, भोग लगा करके, उसको शुद्ध बना करके खाओ। और अभी तो और एक सुंदर प्रोजेक्ट बनवा दिया है, सुना होगा आप लोगों ने, हम लोग किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, कम से कम बीके बाबा के बच्चे जो खाते और खिलाते हैं, अन्नदाता हैं, वो कम से कम अपने कुछ हिस्से में खेती जो कर रहे हैं, फल सब्जियां निकाल रहे हैं, उस पर योग के प्रयोग करो। आपके पास बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है, एक संकल्प की शक्ति है और दूसरी परमात्म शक्ति है। भगवान की शक्तियां हमारे साथ साथ काम करती हैं। अगर मन बड़ा शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, स्वच्छ है, तो उस विचारधाराओं से अगर हम पेड़ पौधों के पास जाते हैं, खेत पर जाते हैं, तो योग के अच्छे प्रकंपन बहुत अच्छी फसल देते हैं। हमारे अनुभव हैं और किसानों ने प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। हम रिसर्च भी करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर वैज्ञानिकों के द्वारा, कि हमारे थॉट्स का, हमारी विचारधाराओं का प्रभाव वनस्पति पर, पेड़ पौधों पर कितनी जल्दी पड़ता है। बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे योग के प्रयोग करो, मनसा सेवा को बढ़ाओ। और मनसा सेवा हम जब करते हैं तो कुछ रुकावटें अपने संस्कारों की होती हैं और कुछ सामने वालों की, व्यक्तियों की भी होती हैं। हमारे प्रभाव, हमारे संकल्प उन तक पहुंच नहीं पाते। करते हैं हम सभी अभ्यास, लेकिन बहुत जल्दी लोग हमारे भावनाओं को कैच नहीं कर पाते। लेकिन पेड़ पौधों में तो अपने विचार, अपनी नेगेटिविटी है ही नहीं। अगर हम उनके साथ बहुत अच्छी वार्तालाप करते हैं, बहुत स्नेह देते हैं, उनको दृष्टि देते हैं, उनको थोड़ा प्यार करते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से वो ग्रोथ उनमें बढ़ता है, उनमें बहुत अच्छे फल आते, सब्जियां आती, अनाज अच्छा होता। क्यों हम बहुत कर्जा लेकर के खादे डालें, केमिकल्स डालें और उसके दुष्परिणाम भोगें? तो ऐसे प्रयोग हम लोग अभी बहुत से किसानों से करा रहे हैं। आप सभी जो यहाँ खेती करने वाले किसान बैठे हैं, वहां तो उठाएंगे? अच्छा, बहुत हैं। आप सबको मालूम हो कि हम लोग यहाँ पर ग्राम विकास की मीटिंग इस ग्रुप में रख रहे हैं और ग्राम विकास के 300-400 सदस्य भी यहाँ आएंगे। उसमें एक दिन ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम रखा है, जो बहुत रुचि रखते हो, सबको निमंत्रण नहीं देता हूँ, लेकिन जो बहुत रुचि रखते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना जानते हो या करना चाहते हो, तो ऑर्गेनिक पर हम ये योग का प्रयोग करवाते हैं। उसकी ट्रेनिंग हमने 21 तारीख को रखी है, एक दिन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि हम सब बाबा से इस संगम युग पर तीन वरदान अवश्य लें। पहला वरदान, नेवर हेल्दी, किसी भी प्रकार की मानसिक मायावी कमजोरी मुझे बीमार न कर दे, मन एकदम स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाबा की यादों में मगन रहे, मन मना भव होकर के रहे, ऐसे हेल्दी दिखाई दे, चेहरा बताए कि तो सदा एवर ग्रीन, एवर हेल्दी है, चेहरा मुरझाया हुआ न हो, सूखा हुआ न हो, उदास न हो, निराश न हो, भले कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो। हमारी दादियों ने शारीरिक बीमारियां अनेक प्रकार की देखी हैं, हुई हैं, एज के हिसाब से भी हुई हैं, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर निराशा, उदासी देखी नहीं, दिखाई नहीं दी, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, सदा मुस्कुराते हुए, सदा रूहानियत में, सदा दृष्टि सने की दे रही थी। तो ऐसी प्रैक्टिस करना कि हम सब बाबा के बच्चे किसी भी प्रकार के कमजोर संस्कारों के अधीन न हो जाएं, क्योंकि कल के वरदान में बड़े अच्छे शब्द थे बाबा के, माया का जन्म आत्मा की कमजोरी से होता है, कमजोरी जो आत्मा की है, संस्कारों की, उससे माया जन्म ले लेती है। माया और कोई चीज नहीं है, हमारे कमजोर संकल्प ही माया बन करके हमारे सामने आते हैं। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे कोई जमदूत नहीं आते हैं, हमारे यादगार शास्त्रों में दिखाया है जब आत्मा शरीर छोड़ने पर होती है तो जमदूत लेने के लिए आते हैं, और वो जमदूत बड़े काले काले भयानक दिखाई देते हैं। तो बाबा ने एक बार बहुत अच्छी मुरली चलाई थी, बच्चे जमदूत क्या है, क्या है जमदूत जानते हो? जो गलतियां आत्मा ने शरीर में रह करके पाप किए हैं, भूल की है, पश्चाताप के रूप में वो काले काले रूप, भूत के रूप में, यमदूत के रूप में सामने आ जाते हैं। साक्षात्कार हो जाता है कि तुमने इस जन्म में इतने पाप किए हैं, वही जमदूत सामने आकर के साथ ले जाते हैं। तो बाबा कहता है जो ऐसे भूत हैं, ऐसी कमजोरियां, ऐसे संस्कार हैं, कमजोर संस्कार हैं, बार बार परेशान करते हैं, वो मुझे दे दो, अर्पित करो, बहुत लाइट हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ, क्योंकि स्थूल में भी सब बीमारियों के कारण आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ कहेंगे पहले वेट कम करो, शरीर का वेट बहुत है इसको कम करो, लेकिन आत्मा की बीमारी में भी वेट बहुत नुकसान कर रहा है। अगर हम देखें तो जितने मानसिक रूप से पेशेंट हैं, मन जिनका डिस्टर्ब है उसका कारण है वेट, शरीर का वेट नहीं मैं कह रहा हूं, ये तो अपने अपने हिसाब से हर एक हल्का कर रहा है, करता है, उसके लिए एक्सरसाइज करता है, परहेज करता है, किसी भी प्रकार से अपने वेट को घटाने की हर एक कोशिश करता ही है, लेकिन मानसिक वेट न बढ़े उसका ध्यान रखो। जैसे वो वेट बढ़ता है कोई ऐसी बासी चीजें, तली चीजें, बहुत मिर्च मसाले वाली बहुत ऐसी चीजें खाते हैं तो शरीर का वेट बढ़ता जाता है अधिक भोजन से, ऐसे ही आत्मा का भी वेट तब बढ़ता है जब बहुत इधर उधर की बातें, पर चिंतन, पर दर्शन, खटपटी, चटपटी, अटपटी बातें, इधर की उधर की, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो बोझ, वो भोजन जब आत्मा को मिलता है पर चिंतन पर दर्शन वाला बड़ा टेस्टी होता है, वो कभी चिंतन में कोई चर्चा में अगर आ जाए, अरे फलानी बहन ऐसे करती, उसने ऐसा कर लिया, वहां ऐसा हो गया, इस सेंटर पर ऐसा हो गया, फिर क्या होता है, बहुत इंटरेस्ट पैदा हो जाए, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, लंबी लाइन लग जाती, और वो चटपटा भोजन खा रहे हैं तो मन रोगी रहेगा या निरोगी, वेट बढ़ा देगा, और अंदर अंदर आत्मा एकदम उन संकल्पों से घिरी हुई आत्मा कभी भी अशरीरी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकती, कभी भी अपने आप को हेल्दी अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए जैसे वो तला गला भोजन बंद कराते हैं, आज हमारे डॉक्टर कहते हैं पकौड़ा भी नहीं खाओ, समोसा भी नहीं खाओ, ये भी नहीं खाओ, ये भी नहीं खाओ, ये सब बंद करो, तली हुई चीजें, ये भी पकौड़े और समोसे जो ऐसे ऐसे खा लेते हैं बीच बीच में, पर चिंतन पर दर्शन के बाबा कहता है इसको बंद करो, बीती हुई बातें, ऐसे हो गया, उसने ऐसा किया था 50 साल पहले, 25 साल पहले, 10 साल पहले, बाबा कहता है बीती बातें माना बासी भोजन, और बासी भोजन खाने वाला स्वस्थ कैसे रह सकता है। तो अगर मन को अच्छा हेल्दी बनाना, स्वस्थ बनाना है तो बासी भोजन, पास्ट की कोई भी बातें हो, बाबा कहता है पास्ट का चिंतन नहीं करो और आने वाले की चिंता नहीं करो, जो होगा अच्छा होगा, वर्तमान को अच्छे से अच्छा बनाओ, आज का दिन मेरा अच्छे से अच्छा बीते, सवेरे उठो, बाबा से गुड मॉर्निंग करो, शक्ति लो, सकास लो, और ऐसे लगे कि बाबा मेरे साथ साथ है। फिर कर्म क्षेत्र पर आते ध्यान रहे कि कर्म इंद्रियों से कोई गलत काम न हो जाए, किसी आत्मा को मेरे से दुख न पहुंचे, कोई भी ईश्वरीय मर्यादा का, श्रीमत का मेरे से उल्लंघन न हो, बस श्रेष्ठ कर्म करते चलेंगे, बोझ नहीं चढ़ेगा, हल्के रहेंगे और बहुत लाइट होकर के रहेंगे तो किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, मानसिक बीमारी। और आत्मा जब स्वस्थ है, शरीर का कोई पुराना हिसाब किताब, कोई खान पान से, कोई कारण से कोई बीमारी आ भी गई तो किस पर बीमारी अटैक करती है, आप लोगों ने देखा होगा जब गर्मी से ठंडी, ठंडी से गर्मी, मौसम चेंज होती है तो बहुत से लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी हो जाती है, बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं, डायरिया हो जाता, पानी चेंज होते ही पेट लूज हो जाता है, अनेक बीमारियों का कारण है वायुमंडल चेंज होना। लेकिन अगर उसका भी कारण देखा जाए तो उसका भी कारण है शरीर का कमजोर होना, जिनका होमोग्लोबिन कम है, जिनका शारीरिक स्थिति कमजोर है, फौरन कमजोर के ऊपर वायुमंडल इफेक्ट करता है। बाबा भी हम सबको कहते हैं अगर तुम आत्माएं आंतरिक रूप से मनन चिंतन करके भोजन को ग्रहण करके उसको खून का रूप नहीं बनाया, हजम नहीं कर पाए। मुरली सुन ली, बहुत अच्छा भोजन मिल गया सवेरे सवेरे, बहुत अच्छा बाबा पौष्टिक भोजन हमको खिलाता, लेकिन उस पौष्टिक भोजन को हमने पचाया नहीं, मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, उसका सुमिरन नहीं किया, उसका स्वरूप नहीं बने, ब्लड नहीं बना, ये कमजोर की कमजोर आत्मा रह गई। फिर कोई ने थोड़ी सी बात अगर कह दी तो पहले पहले इफेक्ट क्या होता, जैसे वो फ्लू आ जाता है, से फीलिंग का फ्लू, फॉलन मूड ऑफ हो जाते, खुशी गायब हो जाती, चिंतन चल जाता है, मुझे ऐसा इसने क्यों बोल दिया। बात बहुत छोटी सी होती है लेकिन वो एक पहाड़ के रूप में दिखाई देने लगती। क्या ध्यान रखना, ये निशानी किसकी है? ये निशानी है कमजोरी की। कमजोर शरीर के ऊपर जैसे वायुमंडल का इफेक्ट पड़ता, प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही आत्मा अपने आप को अगर हेल्दी नहीं बना के, स्वस्थ बना करके नहीं रखती, तो फौरन वातावरण के अंदर अगर कोई वार्तालाप होती है, कोई छोटी सी मेरे लिए कुछ कह दे, मान लो मेरी कोई ने पीठ पीछे भी कोई ग्लानी कर दी, कोई ने कोई मेरे बारे में कुछ उल्टा बोल दिया और मेरे कान तक वो बात पहुंच गई, तो सबसे पहले हमारी आंतरिक खुशी नष्ट हो जाएगी, चिंतन चल जाएगा, फलाना मेरे लिए ऐसा क्यों बोलता है, मैंने ऐसा क्या किया, और फिर वो जब सामने आएगा तो मेरे दृष्टिकोण में उसी दृष्टि से हम उसको देखेंगे। इसलिए बाबा कहता है जो छोटी छोटी बातें आपके मूड को परिवर्तन कर देती, आपके मानसिक खुशी को छीन लेती, आपकी आंतरिक प्रसन्नता को नष्ट कर देती हैं, उसका मूल कारण है तुमने ज्ञान के रत्नों का चिंतन करके उनको शक्ति का रूप नहीं दिया। सुन लिया है मुरली, सुन ली, लेकिन मुरली को पचा नहीं पाए, उसका मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, उससे खून नहीं बना, शक्ति नहीं बनी। इसलिए सभी ध्यान रखना कि बाबा की बातें जो हम सुन रहे हैं उसको अच्छी तरह से, अगर ड्रामा में हर आत्मा का अपना पार्ट है, अगर सब अच्छे से अच्छा इस ड्रामा के अंदर हो रहा है, कोई ने कुछ बोल भी दिया, कुछ हो भी गया, कोई नुकसान भी हो गया, तो उसमें भी कुछ राज है, कुछ भलाई है, कोई कर्जा उतरा है, कोई हिसाब किताब चुकत हुआ, अगर ज्ञान को चिंतन किया तो क्या होगा, आपकी प्रसन्नता आपके पास रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। तो इसको चिंतन करके जिसने शक्ति बनाई है, बाबा की मुरलियों को सुनो और खूब मनन करो, चिंतन करो। जैसे लोग कहते हैं खूब खाओ, पहले पहले क्या होता था बाबा के समय में, दादी के समय में भी, बाबा जब साकार में थे तो सबको कहते थे सवेरे सवेरे इनको देसी घी पिलाओ, यंग थे सभी, जवान थे, बच्चे आए थे, देसी घी पिलाओ, लेकिन देसी घी पी करके हजम करें इसके लिए इनको दौड़ लगवाओ, एक्सरसाइज कराओ। तो सवेरे जब हम लोग शुरू शुरू में आए तो दादी बहुत अच्छा अच्छा हलवा खिलाती थी, लेकिन सवेरे सवेरे 5:30 बजे कहती थी सबको उठाओ, सबको बोलो नक्की लेके दौड़ लगा के आओ, एक्सरसाइज करो ताकि उसको हजम कर सको। अब भोजन तो हम कर लेते हैं लेकिन एक्सरसाइज के लिए समय नहीं देते, हार्ड वर्क करने से डर रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ रोग लग जाएगा, कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी। इसलिए बाबा हम सबको कहता है बच्चे इतना अच्छा भोजन मिल रहा है, मुरली सुनते हो, वरदान सुनते हो, स्लोगन सुनते हो, इतने क्लासेस सुनते हो, इतना अच्छा भोजन मिला बुद्धि को, इसको मनन करो, चिंतन करो, एक्सरसाइज करो, इसके लिए लिखो, आपके अंदर वो हजम हो जाएगा, और हजम हो जाएगा तो आत्मा स्वस्थ निरोगी बन जाएगी। कोई भी प्रकार की बातें आएंगी, प्रॉब्लम्स की दुनिया है कलयुग के अंदर, एक खत्म होगी दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, शारीरिक ठीक होगी तो संबंधों से आ जाएगी, संबंधों की ठीक होगी तो आर्थिक रूप में आ जाएगी, आर्थिक रूप से ठीक होगी तो प्रकृति के द्वारा आ जाएगी, समाज के द्वारा आ जाएगी, सरकार के द्वारा आ जाएगी, क्योंकि ये कलयुग के अंत में हर क्षेत्र में अति होनी है और हर एक का हिसाब किताब जहां से भी 84 जन्म का होगा अंत समय में सबके सामने आएगा, वो चुक तो होगा। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ऐसा मेरे आगे क्यों हो गया, पहले डर गए, घबरा गए, मन कमजोर हो गया, उसको शक्तिशाली बनाओ, आई है बातें खत्म हो जाएंगी, ये सदा साथ नहीं रहने वाली, कोई भी बात आई है बाबा का साथ ले लो, हिम्मत का कदम रखो आगे, बाबा की मदद मिलेगी और पेपर क्रॉस हो जाएगा। तो सबसे पहला वरदान लेना सदा एवर हेल्दी, और दूसरा इतनी वेल्थ बाबा ने दी है, एक एक ब्राह्मण को वेल्दी बनाया है। भले धन न हो, बाबा कहते हैं जेब खाली, खीसा खाली और हैं विश्व के मालिक। भले लौकिक जीवन में कितनी कमाई नहीं है, इतने धन नहीं, इतना पैसा नहीं है, लेकिन बाबा ने जो ज्ञान का धन दिया है, गुणों का धन दिया है, श्रेष्ठ चरित्र का धन दिया है, शक्तियों का धन दिया है, अथाह है, अखुट है। इसलिए बाबा ने पहले पहले क्या किया, कहा लिख दो अखबार के अंदर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारीज। स्थूल धन की बात नहीं थी, स्थूल धन तो बहुतों के पास बहुत है, लेकिन ज्ञान धन में, गुणों के धन में, शक्तियों के धन में बाबा ने इतना माला माल हम सबको किया है, उसको सोचो कितना खजाना दे रहा है, कितने वैल्यूबल रतन है। एक एक बाबा कहता महावाक्य लाखों करोड़ों अरबों रुपए का है, उसको चिंतन करो, उसकी मस्ती में रहो। बाबा ने अपने एक एक बच्चे को एकदम धनाढ्य बना दिया है, संपत्तिवान बना दिया है। हर बच्चे को संपत्तिवान का भाव का वरदान मिला हुआ है। कभी नहीं कहना मेरे पास कुछ नहीं है, जितना है बाबा कहता उसमें चलना सीख जाओ, जितनी कमाई है, जितने खर्चे हैं, उसके बैलेंस को चलाना सीख जाओ। खर्चे बहुत हैं, कमाई कम है, आखिर क्या करोगे, चिंता हो जाएगी। इसलिए जितनी कमाई है, जितनी आवक है, उतने खर्चे करना सीख जाओ। और बाबा के सब बच्चे इसमें होशियार हो गए, क्योंकि हमारे सब व्यर्थ बाबा ने बचा दिए, कोई भी प्रकार व्यर्थ जा ही नहीं रहा है। खान पान हमारा शुद्ध है, न होटलों में खाते, न बाहर कोई शादी ब्याह में जाते, न इधर उधर फैशन करते, न शराब है, न सिगरेट है, न तंबाकू है, न कोई प्रकार का व्यसन है, जिसमें बहुत अधिक खर्चे हो रहे हैं दुनिया वालों के, बाबा के बच्चों के सब वो खर्चे बच गए, बच गए है ना। सभी धनाढ्य हो ना, कि कमी है धन की। और वैसे भी हम सभी अपने प्रवचनों में क्या कहते हैं, पैसे की गरीबी नहीं है, हमारे देश में पैसा था है, लेकिन सबसे बड़ी गरीबी चरित्र की गरीबी है। पैसा होते भी उसको पता नहीं है इसको यूज कैसे करना चाहिए, कहां पर करना चाहिए, दान भी देना चाहिए तो कहां देना चाहिए। अगर ऐसे वैसे को कोई दे दिया और उसे पाप कर दिया तो उसका हिस्सा हमको मिल गया। इसलिए बाबा ने तो हम बच्चों को चलना सिखाया है, हम तो कहते जीना सिखाया है ब्राह्मण जीवन में। तो सभी बाबा के बच्चे ज्ञान धन से, गुणों के धन से, शक्तियों के धन से, खुशी के धन से, दुआओं के धन से क्या है, माला माल है। अथाह दिया है बाबा ने, भरपूर करो अपने आप को, खुश रहो, आबाद रहो, तो तीसरा वरदान अपने आप मिल जाएगा, एवर हैप्पी। संगम युग पर एक एक बाबा का बच्चा सदा प्रसन्न, सदा खुश, प्रश्न है ही नहीं कोई भी। अपने आप को रोज खुशी की डोज दो, खुशी की खुराक खिलाओ। कोई भी बातें हैं, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप, चिंतन नहीं करना। खुशी गायब करने वाली कोई भी घटना हो उसका चिंतन नहीं करना। चिंतन करने से वो बात बहुत बड़ी हो जाती है। बड़ी बात हो जाए उसको छोटा कर दो, छोटी बात है उसको समा दो, छोटी को बड़ा नहीं बनाना। ये हो गया, ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ क्यों होता है, मेरे कोई ऐसा वो कहा जाता है, कोई बात नहीं, मेरा कोई ऐसा हिसाब किताब था, पूरा हो गया, कर्जा उतर गया। कोई के पास कर्जा और उतर जाए तो कितना लाइट हो जाता, हल्का हो जाता। तो हम सब बाबा के खुश नसीब बच्चे हैं, एवर हैप्पी का वरदान ले लो कि मुझे सदा खुश रहना है, और अपने खुशनुमा चेहरे से, प्रसन्न चित चेहरे से सबको खुशी बांटनी है। ये खुशी जितनी बांटोगे उतनी बढ़ जाएगी। इसलिए बाबा ने हम सबको ये तीन वरदान दिए हैं। कलयुग के अंदर किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, धन नहीं है, और धन है तो बेचारा यूज नहीं कर सकता है, हेल्थ ठीक नहीं है। और अगर दोनों चीजें किसी को भाग्य से मिल भी गई हैं तो खुशी नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। तीनों चीजें इस कलयुग में किसी के पास नहीं, लेकिन बाबा कहता मेरे संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को मैं इन तीनों वरदानों से संपन्न कर देता हूं, जो सत्युग में सदा के लिए 21 जन्म तक साथ साथ रहेंगे। तो बाबा ने हम सबको ऐसा माला माल बनाया है, हम सब खुश नुमा, खुश नसीब बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा को बड़े दिल से ऐसे याद करो, शुक्रिया करो, मस्त रहो, और एक सेकंड बैठो और अशरीरी बन जाओ। ओम शांति।
खुशी रहो।